તારીખ 5/9/1992 પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ગ્વાલિયરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 18 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે.
इसलिए मां ऐसा लिया है कि कोई ऐसा चाहे कि हमें आदमी आश्रम कर लेना है, जैसे कहते हैं उठेंगे नहीं, बिना सुने दर्शन लिए नहीं उठेंगे. क्या हो सकता है ऐसा? क्या इसको विकल्प नहीं था संघ दर्शन का करने का, विकल्प नहीं था, बिना विकल्प हो गया. और ऐसा ही होता है, बैठे थे वो अपने आत्मा रूप होने के लिए बैठे थे, तो बीच में समय दर्शन हो गया. हाँ, तो क्या इसमें क्या होता है? हम उसका एक्चुअल प्रोसेस को समझे कि क्या होता है. कि जब मैंने गुरुदेव के प्रवचन सुने तो सुन के ही उनको पहले तो गुरुदेव की प्रतीति आ गई कि जी वो वाणी चल रही है गुरुदेव की प्रवचन की, उसमें जो भाव है, उस वाणी के पीछे जो भाव है वो अनुभवी पुरुष के भाव है. अनुभव उसमें झलकता है, आत्मानुभव बिना ऐसी वाणी आ नहीं सकते. तो पहले तो क्या काम हुआ उसका, गुरुदेव की एक सत्पुरुष के रूप में, अनुभव के रूप में उनको पहचान हुई, विश्वास आ गया कि इनकी वाणी है वो परम सत्य है. विश्वास में क्या आता है कि अनुभवी पुरुष है तो इनकी वाणी है वो परम सत्य है, नंबर एक. दूसरा नंबर में क्या हुआ कि जब उन्होंने ये सुना कि राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है, कुर्बे तो गुजराती में बोलते थे कि राग ने ज्ञान जुदा है, लेकिन वो तो भाव पकड़ते थे, भाव पकड़ने वाले को भाषा की कोई आपत्ति नहीं पड़ती, तो उन्होंने भाव पकड़ लिया. पर अपने आप में उसी वक्त झांक करके देखा कि ज्ञान और राग एक है या भिन्न भिन्न है, तो उनको भिन्न भिन्न मालूम पड़ा अपने अनुभव में. अपना जो परिणमन था वो तो परिणमन के अनुभव में मालूम पड़ा कि राग भिन्न है और ज्ञान भी भिन्न है, ऐसा परिणमन में मालूम पड़ा. तो उस वक्त भिन्नता से क्या मालूम पड़ा कि ज्ञान पर से जो ज्ञायक स्वभाव है उसका लक्ष्य हुआ, उसका निश्चय हुआ, उसका प्रतिभास हुआ, पर वो सम्यक सम्मुख हो गए. जब जीव सम्यक सम्मुख होता है तो उनके लक्ष्य में अपना परमात्मा पद एक ही रहता है, पर उतना लक्ष्य रहता है कि मैं वो पर्याय करूँ, वो पर्याय करूँ, मैं सम्यक दर्शन करूँ, मैं पुरुषार्थ करूँ, वो बात के लक्ष्य में नहीं रहती. तो बैठे उस लिए कि अपना परमात्मा को उसको प्रत्यक्ष करना था. प्रतिभास में प्रत्यक्ष अंश से आता है, वेदन अंश से आता है, और पूरा प्रत्यक्ष करने के लिए वो अपने स्वरूप सम्मुख तो थे ही, तो स्वरूप सम्मुख थे ही, तो उनको उतना आकर्षण था अपने स्वरूप का, परमात्मा पद का, कि उसमें कुछ करना नहीं करने का विकल्प की कोई मुख्यता नहीं थी. पर स्वरूप उतना महिमा में उठा के इसकी महिमा में परिणमन चलता रहा, चलता रहा, पर चलता रहा, प्रसाद भी जोर से आया, निर्गुण के पर्याय में तीव्रता आ गई, और निर्विकल्प स्वरूप लक्ष्य में था उस पर पुरुषार्थ का जोर चला गया, किया गया नहीं लेकिन चला गया, तो विकल्प उतना बंद हो गया. मैं ऐसा निर्विकल्प हूं ऐसा जोर दिया भीतर में अपने स्वरूप पर, तो विकल्प उठना बंद हो गया, तो सम्यक दर्शन हो गया, किया नहीं लेकिन हो गया। तो ये किया नहीं जाता लेकिन हो जाता है, पुरुषार्थ भी किया नहीं जाता लेकिन हो जाता है, महिमा भी की नहीं जाती लेकिन हो जाती है, ऐसे सम्यक दर्शन भी किया नहीं जाता लेकिन हो जाता है। इस ढंग से ये काम होता है, तो उसमें पुरुषार्थ समेत होता है। पर करूँ करूँ में ऐसी पर्याय करूँ, मैं ऐसी पर्याय करूँ, ऐसा पर्याय पर जोर जाता है, तो पर्याय की हालत बिगड़ती है। कर्तृत्व होता है तो पर्याय में एकत्व बढ़ता है, तो पर्याय पर जोर देने से पर्याय सुधरती नहीं है लेकिन बिगड़ती है। ये इसका विज्ञान है पर्याय संबंधित, तो अच्छी तरह ऐसा ही होता है। इसलिए आज ये प्रश्न चला था प्रसाद के विषय में, खाना खाने को गए थे, माणिकचंद जी के वहाँ नहीं आए, वो प्रसाद का प्रश्न चला था, प्रसाद कैसे करना है, प्रसाद तो करना पड़ता है। आप कहते हैं कि सहज होता है लेकिन प्रसाद तो करना पड़ता है, ऐसा पूछा मैंने। प्रसाद क्या है वो तो पहले समझा, एक वीर्य गुण का परिणमन है जो निरंतर चलता है। जब आत्मलक्षण नहीं होता है ऐसे जीव को उल्टा चलता है सहज रूप से, जिसको आत्मा लक्ष्य में आता है तो उसको सुलटा चलने लगता है, उसको सुलटा चलने लगता है तो उसके बीच में अनुभव मनोदशा और केवल ज्ञान तक सब बातें होने लगती है। पर उल्टा चलता है तो उल्टा उल्टा कार्य होने लगता है, तो अधोगति में जाना होता है। तो पुरुषार्थ तो जैसा परिणाम मैंने रिजल्ट मैंने फल आएगा, ऐसा पुरुषार्थ किया ऐसा पुरुषार्थ पर आरोप आएगा। उनकी दो ही दिशा होती है। पुरुषार्थ में क्या होता है उसकी मुख्य बात दिशा सूचक है, पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ है, लेकिन जो उल्टी दिशा में जाता है, राग के प्रति जाता है, पर के प्रति जाता है, मैंने बाह्य उसकी दिशा रहती है, तो वो उल्टा पुरुषार्थ चलता है, उसको उल्टा पुरुषार्थ कहते हैं, गिनते हैं। अगर ये स्वरूप लक्ष्य से अपने और जोर आता है, अपने स्वरूप पर उसका जोर आता है, तो ये पुरुषार्थ सुलटा है ऐसा गिनते हैं। अब ये सही है, ऐसा गिनना सही है, बस उतनी बात है पुरुषार्थ में। लेकिन मैं ये करूँ वो करूँ उसका नाम कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, ये गलत फहमी है पुरुषार्थ के विषय में। सत्पुरुष की बात सच्ची है, मतलब सत्पुरुष को पहचाना इसलिए इसकी बात सच्ची है। क्या सत्पुरुष को पहचाना कि इनकी परिणति में परमात्मा विराजमान है, क्या इसकी अंतर्मुखी जो परिणति चल रही है उसमें परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा रूप परिणति चलती है, उस रूप परिणति हो जाती है, उसको चिपक कर रहती है, उसके साथ अभेद होकर रहती है भाव से, तो सदृश भाव से वो परिणति चलती है, तो उसमें सत्पुरुष में परमात्मा का दर्शन होता है, जो परम सत्य है, परम सत्य है वो, तो इसलिए परम सत्य है, तो इसलिए उनको विश्वास आता है कि ऐसे परमात्मा का दर्शन करने वाला की बात परम सत्य होती है, मुझे कहीं भी शंका उसमें होनी नहीं चाहिए, ऐसा उनको हो जाता है।
द्रव्यलिंगी को विग्रह होता है,
द्रव्यलिंगी को मतलब क्या, द्रव्यलिंगी को सत्पुरुष को पहचानने का होवे तो दूसरी बात है, अपना प्रश्न चल रहा था सत्पुरुष को पहचानने का, अब दूसरा प्रश्न आपका ये है कि द्रव्यलिंगी को सच्चा देव गुरु शास्त्र होते हुए भी क्या उसको क्या, कौन सा प्रश्न है फिर?
आत्मानुभूति नहीं हो पाती,
आत्मानुभूति इसलिए नहीं हो पाती है कि देव गुरु शास्त्र संबंधित राग है इनकी प्रधानता है, जो भी वो क्रिया करते हैं पंच महाव्रत समिति गुप्ति, तो क्रिया करने का जो राग है उनकी उनको प्रधानता है, और उसमें जो कषाय मंद होती है उसको वो आत्म शांति मानते हैं, और जो उनका परलक्षी उघाड़ ज्ञान है शास्त्र संबंधित उनको वो ज्ञान मानते हैं। लेकिन इनके सभी परिणामों का अवलंबन पर पदार्थ है, अपनी आत्मा नहीं है, तो पर के अवलंबन से स्वानुभूति कैसे होगी? स्वानुभूति तो स्वयं के अवलंबन से होती है, उनको स्वयं का अवलंबन ही नहीं है। हाँ, उसको सत्पुरुष की भी पहचान तो आएगी तो परिणाम बदल जाएगा। हाँ, उसको सत्पुरुष की पहचान आएगी तो परिणाम उसका जो प्रसन्न मुख वाला है वो दिशा फेद हो जाएगा। हाँ, सत्पुरुष की पहचान नहीं होती वो बात। पूर्णता का लक्ष्य मैंने क्या है कि मुझे मेरा आत्म कल्याण कर ही लेना है, उसी भाषा अलग अलग है, मुझे जन्म मरण से छुड़ जाना ही है, अलग अलग भाषा है क्या। मुझे भी जन्म मरण अभी नहीं चाहिए, मेरा कल्याण कर लेना ही है, या मुझे पूर्ण होना ही है, यानी मुझे एक अंश भी विभाव का नहीं चाहिए, या मुझे पूर्ण सुखी होना है, अलग अलग भाषा है, लेकिन उसका एक ही जो लक्ष्य है वो तो एक ही है। तो यहाँ से फिर उनको उसकी खोज चलती है, तो मैं कैसे हूँ, ऐसा आत्म कल्याण या जन्म मरण को मिटाने का उपाय जानने वाला जगत में कोई डॉक्टर है क्या? मेरा दर्द तो बहुत पुराना है, इससे भी बात चली थी कि जब दर्द बहुत भारी होता है, गंभीर दर्द होता है, तो फिर इनके लिए किताबें पढ़ना ये बात एडवाइजेबल तो नहीं है। कोई को किसी को अगर कैंसर हो गया और ये डॉक्टर के पास नहीं जाता है और कैंसर की किताब बाजार में से खरीद करके पढ़ने को लगता है, तो ये आदमी मूर्ख है क्या? मूर्ख है। क्यों? क्या पढ़ते पढ़ते ही मर जाएगा वो? कैंसर इतना डेवलप हो जाएगा कि पढ़ते पढ़ते मर जाएगा, उसका इलाज उसको मिलेगा नहीं, उसको तो फौरन डॉक्टर के पास चला जाना चाहिए। ऐसे हम लोग कहीं ऐसी मूर्खता नहीं करे कि सत्पुरुष होवे इनके पास तो जावे नहीं और आगम को पकड़ कर बैठ जावे कि हमारे पास तो आगम है, ये मूर्खता है। ऐसे किसी का भी हित होता नहीं है। ये मार्ग ऐसा अनुभव का मार्ग है, वो ऐसे किताबों में से नहीं मिलता। हर काल में नहीं मिलते, तो फिर मिलाने के लिए, मिलने के लिए हमारा प्रयत्न चालू रहना चाहिए। हमें प्यास लगी है तो पानी नहीं मिलता है, छोड़ो पानी को अभी, ऐसा कभी करेगी कोई? करेगा कोई? तो पानी मिल ही नहीं रहा है ना, छोड़ो ने अभी पानी नहीं पीना है, ऐसा कोई करेगा? मर जाएगा। उनको तो चाहिए कि मुझे सत्पुरुष विश्व में कहीं भी हो, क्या 200-500 हजार मिल नहीं, विश्व में कहीं भी हो, अरे चंद्रलोक में हो क्या, आप जाए जाते ना लोग रॉकेट में, कहीं भी हो मुझे जाना है। मानो जैसा आपने कहा ऐसा हुआ कि सत्पुरुष है ही नहीं, इसलिए उनको नहीं मिला और इनका आयु पूर्ण हुआ। किस भावना में पूर्ण हुआ? हाँ, कुदरत उनको ले जाएगी, जहां भी कोई सत्पुरुष विराजते होंगे वहां उसका जन्म होगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए आप? हाँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनको ये भावना के साथ कुदरत बंधी हुई है, भावना के साथ कुदरत बंधी हुई। कोई पाप करता है तो नरक में जाता है, जब पाप के परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है तो जिसको परमात्मा चाहिए इसके साथ कुदरत नहीं बंधी हुई है क्या? कैसे बनने वाली बात है? तो बलवान चीज है भावना तो।
इसी प्रकार से यदि हम सत्पुरुष का आश्रय लेने की खोज में रहे तो जो हमारा परम कारण स्वरूप है उसको
हमने ऐसा नहीं कहा कि वो सत्पुरुष को पहचानता है तो भी नहीं प्राप्त होता है, ऐसा नहीं होता है। जो सत्पुरुष को पहचानता है, सत्पुरुष की आज्ञा में चलता है, पहचान करके जिसको सत्पुरुष का बहुमान भक्ति स्वच्छंद निरोध रूप से आती है क्या, और परम प्रीति इनके प्रति होती है, उनको अपना स्वरूप निश्चय होता ही है। जिसको स्वरूप निश्चय होता है उसको अनुभव होता ही है। ये 701 वाला कल का पत्र तो वही बताता है, श्रीमद जी का पत्र लिया ना 751 वाला, कल दोपहर की चर्चा में वो बात ली थी ना, उसमें वही तीन बात है कि जो सत्पुरुष को पहचानेगा वो क्रमशः सत्पुरुष होगा और होगा ही, खुद ज्ञानी हो जाएगा। इसको 194 नंबर का पत्र है श्रीमद जी का, उसमें जाति स्मरण ज्ञान के आधार पे उन्होंने ये पत्र लिखा है कि हमें भूतकाल में ऐसे सत्पुरुष के चरणारविंद में रहने से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो भूतकाल में भी पूर्व भाव में आराधक थे, फिर च्युत हो गए थे, फिर इस भाव में फिर से आराधना को उन्होंने अनुसंधान कर दिया। जाति स्मरण ज्ञान के आधार से लिखा था, लिखा है उन्होंने, 24 साल का ये पत्र है उम्र में, कि हमको भूतकाल में ऐसे सत्पुरुष के चरणारविंद के सेवन से ही हमको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और इसके बिना किसी को ज्ञान प्राप्ति हुए ऐसा कभी बनने वाला नहीं है। पावे नहीं गुरु गम बिना, यही अनादि स्थित ये वस्तु स्थिति है निमित्त निमित्त समन से। और ये कहा उन्होंने कि सभी शास्त्र को देखते हुए हमें यही शास्त्र लक्ष्य प्राप्त हुआ है कि ऐसे ही ज्ञान प्राप्ति होती है, दूसरे प्रकार से किसी को न ज्ञान प्राप्ति हुई है न होने वाली भी है। इतना महत्व दिया है उन्होंने। नहीं हो सकता है, जीवन सजीवन मूर्ति चाहिए क्या? ज्ञान प्राप्ति में सजीवन मूर्ति चाहिए, बिना सजीवन मूर्ति कल्पना हो जाया करती है क्या? कल्पना हो जाया करती है। गुरुदेव ने तो पाया, अब आपको प्रश्न मैं उठाऊं कि गुरुदेव ने तो समय सार में से पाया, लेकिन वो सजीवन मूर्ति सिमंदर परमात्मा से लक्ष्य और संस्कार लेकर आए थे, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो इधर नहीं प्राप्त करते थे। समय सार तो घर घर में पड़ा है, जो सबको प्राप्ति नहीं होती और गुरुदेव को प्राप्ति हो गई, यही कारण है कि वो संस्कार लेके आए थे।
तो संस्कार भी जब डलता है, सजीवन मूर्ति का बोध प्रत्यक्ष मिलता है तब, इसके पहले नहीं मिलता किसी को। तो एक दफे तो सजीवन मूर्ति से बोध मिलना चाहिए, चाहे इस भाव में चाहे अगले भाव में कहीं भी, लेकिन इसके पहला किसी को अभिप्राय से मिल जाए चीज, कोई ग्रंथ में से मिल जाए, ये न भूतो न भविष्यति।
सबसे बड़े प्रत्यक्ष गुरु अपने सर्वत्र परमात्मा की यही प्रतिमा है, ये सबसे बड़ी समय दर्शन में वर्तमान में सबसे उत्कृष्ट निमित्त कारण। क्योंकि जैसे अपन पूर्व संस्कार लेके अपन जिन धर्म में आए हैं, जिन धर्म का निमित्त मिला, तो सर्वत्र गुरु जो अपने सर्वत्र परमात्मा है, सर्वत्र परम गुरु है, तो जैसे इनके इनसे अपन था जिससे यहाँ आए अपन, तो जैसा कि सर्वत्र परमात्मा देखे अनंत आत्मा है वर्तमान में अनंत होती है, और सब अनंत आत्माएं अपने अनंत स्वभाव में से अनंत होती हुए, इसीलिए बड़का आपके लिए ओम नदी है निर्विकल प्रति। क्योंकि जिन भूतक जिला स्वामी की जो मूर्ति है वो पृथक की प्राप्ति ही भूतक होती है, जिसका नियम
ऐसा है कि हम जिन धर्म में आए हैं कुल से, इसलिए हमें पूर्व लक्ष्य हो गया है, ऐसी बात नहीं है। लक्ष्य होना दूसरी बात है, ये पुण्य बंध का कारण है, मैंने राग का फल है। जैन कुल में जन्म होना ये एक शुभ राग का फल स्वरूप है, उसमें आत्मलक्ष्य सभी को हो गया हो, वो लोग इधर जैन धर्म में आए हो, सच्चे देव गुरु शास्त्र के कुल धर्म में आए हो, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं है। स्वरूप लक्ष्य होना ये बात ही कोई दूसरी है, जिसमें संस्कार डल जाते हैं, वो संस्कार ऐसे डल जाते हैं कि निर्मूल होते नहीं कभी, तो उनको ग्रंथ से या भगवान के दर्शन से या वेदना से, नारकी में जाएं तो वेदना से, वहां तो ग्रंथ भी नहीं है और प्रतिमा भी नहीं है, वहां तो फिर वहां भी होता है सातवीं नारकी में, तो वेदना के निमित्त से होता है वहां, तो वहां हो सकता है। तीन इंच गति में होता है, कैसे होता है, वहां भी ग्रंथ नहीं है, वहां भी प्रतिमा नहीं है, फिर भी होता है, क्यों? कि वो संस्कार लेकर के गए हैं। तो संस्कार ले, संस्कार का पढ़ना आत्मा में ये दूसरी बात है, और कुल धर्म में आना वो बिल्कुल दूसरी बात है, दोनों एक बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो बात आती है सिद्धांत में कि जितने जितने लोग जैन कुल में जन्म पाए, उतने उतने सभी को आगम से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। नहीं, नहीं, सर्वस्व उत्कृष्ट नहीं है वो, तो बाह्य निमित्तों ग्रंथादि जो है उसमें वो बात है, स्वरूप दर्शाने में उत्कृष्ट निमित्त है। जैसे ग्रंथ से भी स्वरूप दर्शाया जाता है और प्रतिमा से भी स्वरूप दर्शाया जाता है, तो दोनों में उत्कृष्ट प्रतिमा है। क्यों? कि ग्रंथ है वो पढ़ने की और सुनने की चीज रही, और ये तो बिल्कुल मूर्ति ही आत्मा की है, जो भगवान की मूर्ति है वो तो सीधी आत्मा की मूर्ति है, मूर्तिमंत आत्मा है, अमूर्त स्वरूप की मूर्ति बना ली है, तो उसमें ज्यादा स्वरूप बाहर आता है, देखने में ज्यादा भाव आता है, ये दो की बराबरी में है। लेकिन सजीवन मूर्ति से भी वो उत्कृष्ट निमित्त है, ऐसा कहीं नहीं है। सजीवन मूर्ति वो सजीवन मूर्ति है, हाँ, सजीवन मूर्ति के का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्या इसका कोई विकल्प नहीं है, इसकी कोई दूसरी पर्याय नहीं होती। तीन ही सजीवन मूर्ति होते हैं, एक सर्वज्ञ देव, एक निर्ग्रंथ भावलिंगी मुनि, और तीसरे सम्यक ज्ञानी अनुभवी पुरुष, ये तीन होते हैं। तो आज के काल में हमें दो जगह से तो माल मिलना बंद हो गया, हम एक जगह रह गई है, वो भी कभी हो कभी नहीं हो, जैसा पद्म सेन जी ने कहा वैसा है। तो उतना मूल जो कंपनी का माल है वो अगर कंपनी से सीधा नहीं मिलता तो इसका एजेंट मुनिराज होता है, यहाँ से ले लें, अगर इनसे भी नहीं मिलता तो दूसरा इनका सब एजेंट है सतपुरुष, इनसे ले लें, अगर इनसे नहीं मिले तो फिर कहीं माल मिलने वाला नहीं है, ये बात है। ऐसी बात है।
शत्रु की गोदी आत्म जिज्ञासा की पात्रता है।
हाँ इसमें, हाँ ये पात्रता में आता है।
इसमें पराश्रितता नहीं है?
नहीं नहीं पराश्रितता नहीं है। हम पर की मुख्यता से इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन जिस जीव को सत्पुरुष की खोज करने का भाव आया, यही इसका उपादान में सबसे बड़ा विवेक है। तो इसके उपादान को हम देखें तो वहाँ पराश्रितपना नहीं है। इसका उपादान से हम देखें तो क्या बात है कि इसकी सत्पात्रता देखने में आती है। तो ये सत्पात्रता जो है, इस उपादान को मुख्य करे तो पराधीनता कहाँ रही? इसको पराधीनता के तर्क में या कुतर्क में नहीं ले जाना चाहिए। क्या जब हमें दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे देहार्थ के लिए? कौन सा प्रयोजन है वहां? देह का प्रयोजन है। वहां पराधीनता नहीं सोचेंगे। भूख लगी है, प्यास लगी है, परद्रव्य का आश्रय होता है, वहां नहीं सोचेंगे। तो सत्पुरुष की बात आई, हम पराधीनता सोचते हैं। तो ग्रंथ पढ़ने में पराधीनता नहीं आई, भगवान के दर्शन करने में पराधीनता नहीं आई। हाँ कहाँ जाओगे फिर? तो वहां तो विवेक करना पड़ेगा। वो जो सजीवन मूर्ति है, वो सजीवन मूर्ति है, उसमें भी समझने लायक चीज है कि केवली कितने होते हैं, कि जितने मुनि होते हैं उतने केवली नहीं होते हैं, और जितने होते हैं उनको सभी को वाणी का योग नहीं होता, तीर्थंकरों का होता है और कुछ सामान्य केवली को होता है, बहुधा नहीं होता है। अब जितने मुनि हैं इनसे ज्यादा सम्यक दृष्टि मिल सकते हैं, मुनि कम मिलते हैं। बराबरी में संख्या देखो तो ऊपर ऊपर जाओगे। मिथ्या दृष्टियों से सम्यक दृष्टि कम होंगे, सम्यक दृष्टियों से मुनि कम होंगे, और मुनि से केवली कम होंगे। और आज के काल में तो केवली का तो काल ही चला गया, वो विच्छेद हो गया पद। इस काल में इस पद के कोई अधिकारी यहाँ तो इस क्षेत्र में नहीं रहे। बात रही मुनि पद की, तो टोडरमल जी साहब पौने 200 साल हो गए के लिखने में, कि पिछले 5-6 सैकड़ा बोलता है 5-6 सैका में कोई हमारे मुनि धर्म वाले बैठे नहीं। उस समय 5-6 सैकड़ा लिखा
है।
हाँ कि मुनि धर्म परम की परंपरा देखने में नहीं आ रही है। हाँ अब कौन रहे कि जो है वो कोई रहे तो सम्यक दृष्टि रहे, और वो भी क्वचित होंगे क्वचित नहीं होंगे। जब ऐसी हालत है तो ये चीज कितनी दुर्लभ होगी, कि इतनी दुर्लभता है तो इसका मूल्य कितना, कि निमित्तत्व से की अपेक्षा से देखे तो तीनों में एक सा निमित्त है। निमित्त होने में तो तीनों में एक सा निमित्त है, जो फर्क है वो तो इनके आपस में उपादान में है। जहां तक हमारे लेना देना है, हमें तो कोई अरबपति मदद करे या करोड़पति करे या लखपति करे, हमें तो मदद करने वाला चाहिए। जैसे हमारी दरिद्रता तो दूर हो जाए, हमारे लिए तो जो मदद करे वही अरबपति है, भले ही चाहे वो हजारपति हो। तो ये माल लेने की जो गरज है वो सच्ची होनी चाहिए। सच्ची होगी तो सब बात सरलता से सीधी समझ में आ जाएगी, वरना तर्क कुतर्क बहुत चलेगा इस विषय में, कि ये तो चतुर्थ गुण स्थान वाला है, ये तो गृहस्थी है, क्या है, ऐसे चलेगी तो व्यापार करता है, गृहस्थी चलाता है, कई प्रकार के तर्क उठेंगे, नहीं तुमको माल मिलता है कि नहीं मिलता है, दुकान पर व्यापार करने को बैठता है और कोई गरीब आदमी माल लेने को आता है तो नहीं देता है क्या? तुमने मेरी दुकान पर तो श्रीमंत को ही मैं माल बेचता हूँ, गरीब को माल नहीं देता हूँ क्या? जो भी पैसा देगा उसको माल मिलेगा। हमारे यहाँ तो एक ही काम है कि जो पैसा लेकर आएगा वो तो माल लेकर जाएगा हमारा, वहां देखता है कोई है ये ग्राहक पैसे वाला था, ये ग्राहक गरीब है, गरीब को नहीं देना नहीं बेचना। क्या अगर हमें चाहिए तो हमें मिलेगा, अगर हमें दरकार नहीं है तो होता हुआ भी हमारे लिए तो नहीं होने के बराबर है। ये बात है वो ठीक है, लेकिन चाहिए किसी को ये सवाल है, चाहिए किसी को वो सवाल है, मिले नहीं मिले वो सवाल नहीं है, किसको चाहिए वो सवाल है। हाँ ध्यान तो मुद्दे पर जाना चाहिए ना, फालतू की बात करने से क्या फायदा। हाँ वो भी अनंत का जो स्वरूप है वो प्रत्यक्ष लिया है, जो प्रत्यक्ष पहन को देखते हैं ऐसी बात, ग्रंथी वाली बात नहीं है। उसका जीवन मूर्ति विराजमान है इसे समझते हैं। कुंदकुंद स्वामी तो महान आचार्य है, ऐसे कोई महान आचार्य हो या किसी भी ज्ञानी हो जिसकी वाणी ग्रंथारूढ़ होती है वो कभी निष्फल नहीं जाती। क्या अगर वो निष्फल जाने की है तो ग्रंथारूढ़ होती ही नहीं। बहुत से ज्ञानी होगी सभी की ग्रंथारूढ़ नहीं हुई, बहुत से मुनि होगी बहुत से आचार्य होंगे सभी की नहीं हुई, लेकिन जिनकी होती है वो तो कभी निष्फल नहीं जाते। किसी न किसी लाए जीव को वर्तमान में नहीं तो भविष्य में, साक्षात नहीं मिले तो संस्कार याद आएगा गुरुदेव जैसा, 2000 साल के पीछे गुरुदेव पैदा हुए। हाँ जो समय सार 2000 साल पहले लिखा गया और गुरुदेव 2000 साल के बाद पैदा हुए, लेकिन संस्कार लेके आए, वाणी निष्फल नहीं गई, वो वाणी से उनका काम हुआ और इनका काम हुआ तो अनेकों का काम हो होने का संभव है। तो किसी भी ज्ञानी की वाणी एक ऐसी चीज है, वो भी एक सत्य है, वाणी भी एक सत्य है तो निष्फल नहीं जाती। या तो कोई प्रत्यक्ष से उसका सुनने का मिल जाता है जैसे कसो गांधी जी को मिल गया समाचार सुनने, या कोई संस्कारी जिनको उसकी भेंट हो जाती है मानी की तो पकड़ देता है अपने आत्मा को। हाँ मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अपने को अपना संस्कार पर भी हमें तो नजर नहीं है, इसलिए कहते हैं कि संस्कार जब मालूम नहीं पड़ता है तो हमारे लिए तो सत्पुरुष चाहिए। मानो कि आपको कैंसर का किताब भी मिला और डॉक्टर भी मिला, आप क्या पसंद करेंगे? डॉक्टर को ही पसंद करेंगे, सीधी बात है। तो जब हमें पता नहीं है कि संस्कार हमारे है कि नहीं है तो
हमें तो सत्पुरुष को खोज करना ही चाहिए, पर जिसको संस्कार होता है उनको उनका भी एक लक्षण होता है जो आत्मसिद्धि में श्रीमद जी ने लिया है कि बहुत परिश्रम से परमार्थ की बात समझ में आती है प्राय संसारी जीव को, तो बिना परिश्रम परमार्थ की बात को पकड़ लेता है, ये सूचित करता है कि उनको कुछ संस्कार है। हाँ, तो संस्कारी जीव को प्रतीत आ जाती है कि ये चीज मुझको किसी ने बताई नहीं, लेकिन पढ़ते ही मेरा ध्यान इतनी गहराई से इस पारमार्थिक विषय पर जाता है तो लगता है कि मेरे जीव ने अगले भव में इस धर्म का संस्कार ग्रहण किया है, तो उनको पता चल जाता है, उसको संदेह नहीं पड़ता। और जिसको संदेह होता है उनको संस्कार नहीं पड़ा है। ये बात है, वो बात तो सब साफ है, इतनी भी बात है, सब बहुत साफ है। उसमें क्या नुकसान है आपको? कोई नुकसान है क्या? हाँ, तो आपको कुछ चीज चाहिए या नहीं चाहिए, सवाल तो उतना ही है। चाहिए तो आप जाएंगे, प्यास लगी तो पानी की खोज करेंगे, करनी पड़ेगी, इसका क्या मतलब? तो पानी प्यास ही नहीं लगी है। अगर प्यास लगी है तो पानी नहीं दिखेगा, लेकिन हवा भी आएगी ना पानी वाली, तो वहां जाना होगा। क्या सुगानी जी को क्या हुआ? वो तो मूल दिगंबर थे, शास्त्र पढ़े थे, सब शास्त्र पढ़ते थे घर पे। एक दफे तो पंडित को घर पे रख करके शास्त्र पढ़े, सेठ पंडित को ले आए, तो मुझे समझना है शास्त्र में क्या लिखा है, मिले नहीं कुछ। और जब आत्मधर्म मिला उनमें, ऐसा उसमें जब देखा कि ये सत आवश्यक नहीं है, धर्म में तो एक ही आवश्यक है, तो उनको हवा आ गई कि ठंडी हवा इधर है, पानी उधर होगा। सभी विकल्प को शांत करने से शांति होती है, तो छह प्रकार का विकल्प छोड़ करके एक ही आवश्यक निर्विकल्प है, तो उनको हवा आ गई। तो 600 मील की मुसाफिर किया उन्होंने, कितनी सफर किया? 600 मील की सफर कर लिया उन्होंने। अनजाने प्रदेश में गए, कभी गुजरात में सोनगढ़ में आए नहीं थे, कभी गुरुदेव को देखा नहीं था, गुजराती भाषा से परिचित नहीं थे, लेकिन प्यास लगी थी और ठंडी हवा का एहसास हुआ। 600 मील के सफर करके सोनगढ़ आ गए, और उतनी प्यास लगी थी, उतनी पास प्यास लगी थी कि अगर पानी नहीं मिलता तो जिंदा नहीं रहते। उतनी तैयारी लेकर के वो आए थे, उतने तलब लेकर के आए थे, उतनी पात्रता लेकर के आए थे, तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आते ही काम कर लिया। तो ये बात है, तैयारी तो उपादान से होती है, बात निमित्त से होती है, लेकिन तैयारी तो उपादान की होती है। तो उपादान की तो हम देखे नहीं इसकी योग्यता को, पर तर्क लगा हम निमित्त का, ये तर्क नहीं है, कुतर्क है।
भगवान की भगवान की पूजे देखा तो वहाँ अपने अंदर तो देखना पड़ेगा, इतना परिश्रम पाएगा,
परिश्रम क्यों किया
जाए
वहाँ
पर
आना इधर है, लेकिन कैसे आना वो समस्या है। क्या हम जानते हैं गुरुदेव की कृपा से आज तक कि अंतर्मुख होना है हमें, क्या कितना काम करना है, न स्वाध्याय करने का कष्ट करना है, न पूजा भक्ति का, न दर्शन का, न कोई बात का, एक अंतर्मुख हो जाए ना तो अपने परमात्मा कारण परमात्मा प्रत्यक्ष खड़ा है, वो कभी बैठता ही नहीं, खड़ा ही रहता है हमेशा, क्योंकि कारण परमात्मा है। खड़ा नहीं रहता है, अपने किवाड़ को खटखटाता है, हर पर्याय पे खटखटाता है। तुम किवाड़ खोल, किवाड़ खोलते ही तुझे दर्शन हो जाएगा, मैं खड़ा हूँ, मैं कभी बैठता भी नहीं, ऐसा कारण परमात्मा खड़ा है भीतर में। लेकिन अंतर्मुख कैसे होना, ये एक समस्या है, और ये समस्या का समाधान बिना सत्पुरुष नहीं होगा, ये सवाल है, इसलिए जरूरी है। फिर गुरु की कितनी महिमा थी उन्होंने, कितनी आई, कितनी आई है देखो, है उन्होंने ये लिखा है कि अगर किसी को गुरु की महिमा नहीं आती है तो बहुत निश्चित जोर से किया है उसको, क्योंकि तो ज्ञानी होने के बाद ऐसी पराधीनता आती है किसी को, पराधीनता नहीं योग्यता का सूचक है ये बात, ये बात उपादान सूचक है, निमित्त सूचक नहीं है, वो ऐसे समझना चाहिए। बहुत महिमा थी उन्होंने गुरु की, इतनी महिमा की है, अंडरटोन देखो आप, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। व्यक्ति का बहुमान का सवाल ही नहीं है, सवाल तो वो है कि श्री गुरु जो आत्मभाव व्यक्त कर रहे हैं, भाषा उसमें माध्यम है, और भाव भाषा का बैकग्राउंड कौन सा है, भाव है, तो सुनने वाला और कहने वाले के बीच में एक इंटरलिंक होती है, क्या वो भाषा को फिर नहीं देखते, सोगानी जी तो भाषा समझते ही नहीं थे गुजराती, लेकिन भाव का इंटरलिंक होता है, इनका जो आत्मभाव निकलता है उसको पकड़ने की योग्यता उपादान में होती है, और जब उनको ये आत्मभाव समझ में आता है तो उनको महिमा आती है, ओहो ये बात है, ऐसा तत्व है, बस इनकी महिमा है, व्यक्ति की महिमा नहीं है, ये तो भावों की महिमा है, स्वभाव की महिमा है, गुण की महिमा है, फिर व्यक्ति का तो नाम लिया जाता है, असल में तो ये गुणों की महिमा है, भावों की महिमा है, ऐसी बात है। मैं तो गुरुदेव तो क्या करते थे कि कोई गुरुदेव की महिमा सामने कर देते थे ना तो नीचे भी कर देते थे, हमारे मुमुक्ष थे पुराने गुजर गए, तो गुरुदेव के सामने ऐसे बोलते थे भक्ति वर्ग के, भले ही एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ नहीं करता होगा, लेकिन आपके बारे में ये बात हम सम्मत नहीं कर सकते, आप तो हमारा कल्याण करने वाले हो, ऐसे करके बोलते थे। तो गुरुदेव क्या कहते थे, इस वक्त ये तुम्हारा राग, तुम्हारा राग है, छोड़ो राग को, तुम राग को छोड़ो, ये तुम्हारा राग है, क्यों कि ये बात अपने पर आ गई, तो अपने पर आ गई तो व्यक्तिगत रूप से अपने पर आ गई, तो ज्ञानी तो ऐसे लेंगे नहीं, हाँ हाँ तुम्हारा राग अच्छा है, ऐसा तो कहेंगे नहीं, निषेध करेंगे। लेकिन जब बेंसी की बात आई, तब दूसरा अज्ञानी की बात आई, तो गुरुदेव ने क्या फरमाया कि इसका जितना बहुमान किया जाए उतना कम है। धीरे से उनको करते थे ना स्वागत जन्मदिन पर, तो ये बोले कि जितना भी किया जाए उतना कम है, क्योंकि वो अपने पर नहीं आते। फिर जब ज्ञानी को मुमुक्षु की भक्ति आती है तो सम्मत करते हैं, लेकिन अपने बारे में होती है तो निषेध कर देते हैं कि हमारी नहीं कर। तो ये बात न्याय की है, हम किसी पर उपकार करें तो हम जीने ही नहीं, और कोई हमको पानी भी पिला देने तो हम उपकारी मान ले करें, बड़ा उपकार किया हमने, कहो तुषाले क्योंकि आपने पानी पिला दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। तो दूसरे को थोड़े उपकार को भी ज्यादा दिखावे पर अपने बहुत कुछ किया हो तो कुछ नहीं गिने, ये न्याय का विषय है। ऐसी बात है, न्याय का लेने देने का जो वजन है वो बदल जाता है। इसी का नाम न्याय है। हाँ, तो बहुत महिमा ये बात अलग होती है, वो कहते कि हमारी नहीं करो। हाँ ठीक है, ये अच्छा बहुत सुंदर प्रश्न है। ये भोग संज्ञा तो जीव को अनादि से है। क्या भोग संज्ञा तो अनादि से है ही जीव को? स्वरूप का निश्चय नहीं होने में और शास्त्र आगम को पढ़कर के भी या श्री गुरु से आत्मा का स्वरूप सुन करके भी हम किसी जीव को सही आत्म स्वरूप का निश्चय नहीं होने के तीन कारण हैं। एक ओग संज्ञा, एक लोक संज्ञा और तीसरा असत्संग। क्या ये तीन कारण में अगर कोई जीव होता है तो उनको आत्मस्वरूप के विषय में विचार करने पर भी निश्चय नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, कल्पना हो जाया करती है, गलत फहमी होती है कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा है, विचार करने पर भी। तीन कारण हैं। तो ओग संज्ञा मैंने क्या, ये आपका प्रश्न है। लोक संज्ञा बाद में सोचेंगे, पहले आपके प्रश्न को उत्तर दूंगा। ऐसे प्रश्न को समझ सकते हैं कि जिसका संग नहीं करना चाहिए ऐसे अवगुणी जीवों के प्रति प्रीति रखना, अपेक्षा रखना, उनके संग में रहना, ये आत्मा को स्वरूप की पहचान करने में नुकसान करने वाले परिणाम है। ओग संज्ञा में क्या है कि हम भावों की तो चर्चा करते हैं, देखिए कितनी बड़ी भूल है अब अपने स्वाध्याय में जो भूल रह जाती है कि हम तत्व ज्ञान के विषय में चर्चा परिचर्चा प्रमाण मांचन चिंतन सब कुछ करते हैं, विचार करते हैं, और जिस भावों को हम उनके विषय में इतना परिश्रम करते हैं वैसे भाव प्रकट चल रहे हैं उसके सामने देखते नहीं हैं। कितनी बड़ी भूल है ये बताइए। हम सीधी सादी बात आपको पूछेंगे कि बहुत सारी बात हमारी समझ में आ चुकी है कि राग है तो दुख रूप है, लेकिन वो सुना पढ़ा विचार करके सम्मत किया, उसकी चर्चा परिचर्चा सब चल गई, लेकिन हमारे राग में हमने दुख देखा कब, अनुभव किया कब? तो उसको तो हम देखते नहीं है। तो हमारे परिणाम को, हमारे भावों को हम देख करके, उसका परिचय करके, उसका अनुभव करके जहाँ तक निर्णय नहीं करते हैं वहाँ तक ओग संज्ञा चालू रहती है। हम सर्वप्रथम सोनगढ़ आए तो हमें ये ताज्जुबी लगी थी कि यहाँ तो भावों की बहुत चर्चा होती है और भावों के सामने देखने की तो कोई चर्चा ही नहीं चल रही है, जो आज तक भी नहीं चल रही है। क्या चलती है? सब भावों की चर्चा, क्रोध ऐसा होता है, राग ऐसा होता है, द्वेष ऐसा होता है, प्रशस्त ये होता है, अप्रशस्त वो होता है, इसके भंग भेद प्रभेद सब बहुत चलता है, लेकिन अपने परिणाम में टोडोमल जी ने बहुत सुंदर लिखा है इसके विषय में कि कोई राग राग में सीखता है, सीखता है तो ये मंदाक्रांत में कितनी मात्रा होती है, वसंत तिलका में कितनी मात्रा होती है, मालिनी में कितनी होती है, हाँ सद्रा में कितनी होती है, दोहा में कितनी होती है, उनके जितने जितने भी राग रागनी होती है ना सब सीख लेते हैं। पर कोई गाते हैं और बजाते हैं तो उस वक्त तो वो समझ नहीं सकता कि वो कौन सा चल रहा है, हाँ? मात्रा को समझते हैं, पर गाने बजाने वालों को मात्रा सीखने की कोई जरूरत नहीं कि मंदाकांता में कितनी मात्रा है, हाँ पर शार्दुल विक्रीडित में कितनी है कोई जरूरत नहीं है, उसको गाना आता है बस बात खत्म, बजाना आता है बात खत्म। तो ये बात है, उसमें हम भेद प्रभेद सीखते हैं आगम के माध्यम से, लेकिन अपने परिणामों को तो पहचानते नहीं कि राग किसको कहे, दुख किसको कहे, सुख किसको कहे, आश्रव किसको कहे, परिणाम को देखते नहीं, तो वहां तक ओक संज्ञा रहती है। ये ओक संज्ञा की निवृत्ति अवलोकन से और अवलोकन का प्रयोग से मिलती है, वहां तक नहीं मिलती है, जिसको हम सादी भाषा में भाव भाषण कहते हैं, भावों का प्रतिभाषण, भाव के भाषण होना चाहिए। एक आदमी को काम को भेजते हैं, उसको ये काम कैसे करना उसका पूरा भाव भाषण नहीं होता है, तो वहां जो आदमी के पास भेजा वो नहीं मिला तो वापस चलाएगा, क्या बोलेंगे कि भाई वहां तो उठा नहीं, इसलिए मैंने उसको बोला नहीं कुछ किसी को, क्यों वो आदमी नहीं मिला किसको बोले, लेकिन तुमको भाव भाषण होना चाहिए कि हमें ये काम करना जरूरी था तो इसकी तलाश करनी चाहिए थी, वहां कोई दूसरा था तो उसको उसको क्या संबंध है, उसको बात कहने लायक है या नहीं कहने लायक है, ये पूरी बात काम कौन करेगा, जो धनी होगा वो करेगा, क्योंकि उसको काम करने का भाव भाषण है, नौकर को नहीं है, नौकर वापिस आ जाएगा। तो ये हमारे काम करने में गुरुजी बहुत फरमाते थे अपने प्रवचन में, भाव भाषण होना चाहिए, तुम धारणा कर लेते हो भाव भाषण नहीं करते हो, ऐसा कहते थे। तो भाव भाषण से ओक संज्ञा की निवृत्ति होती है, पर भाव भाषण अवलोकन से, भावों का अवलोकन से होता है, अवलोकन में अनुभव का परिचय होता है, इसलिए ओक संज्ञा नहीं रहती। ये ओक संज्ञा है वो स्वरूप निश्चय नहीं करने देगी, स्वरूप निश्चय नहीं होगा, स्वरूप की कल्पना हो जाएगी, क्योंकि भाव नहीं देखते हैं, ज्ञान में स्वभाव क्या है वो देखना है, तो भाव भाषण तब आएगा। और लोक संज्ञा में तो क्या है कि तो लोगों की नजर से देखना, लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, मैं प्रवचन करता तो मेरी इंप्रेशन आप लोगों पर कितनी अच्छी होती है, ये मेरी लोक संज्ञा है क्या? ये मेरी लोक संज्ञा है, ये दृष्टांत दिया आपको। तो ऐसे लोक संज्ञा में क्या कर होती है कि जो भी जीव प्रवृत्ति करता है इसे लोगों के सामने देख लेता है कि लोगों को क्या लगता है, लोगों को अच्छा लगता है ना, बस यही लोक संज्ञा है। समाज को क्या लगता है, अब तो हिंदी भाषी क्षेत्र में जब जब मैं आता हूँ आगरा वगैरह में, तो यही लोग कहते हैं कि हमारे तो समाज के बीच में रहना है, क्या वही कलकत्ता में भी मारवाड़ी लोग बहुत थे, मैं फरवरी में गया ना, यही चलती थी वो मोहम्मद जी पार्क में वगैरह से आते थे, क्या करे साहब हमारे तो समाज के बीच में रहना है, सब सगे हैं संबंधी है तो उनके साथ रहना पड़ता है, तो फिर क्या करे, क्योंकि तेरा पंखा भी संदेह का तो झगड़ा चलता ही है, और ये नया सूर्य कृति वाला कुछ न कुछ न कुछ न कुछ सौंदर से निकलते रहा, वही क्या करे हमारे तो आपस में सया संबंधी है, सबके साथ रहना पड़ता है, क्या करे। तो ये लोक संज्ञा है कि धर्म में भी हम लोगों को बीच में ले आते हैं, समाज अलग चीज है, जाति अलग चीज है, संप्रदाय अलग चीज है, और हमारा निजी धर्म कोई दूसरी चीज है, उसको इसके साथ मिलाना नहीं चाहिए, अगर हम मिला देते हैं से लोक संज्ञा में आ जाते हैं, स्वरूप का निश्चय पहचान कभी होगा ही नहीं, अनुभव होने का सवाल नहीं रहता, लोक संज्ञा भी नहीं होनी चाहिए, ये बात है। अध्यवसान और अध्यवसाय और अध्यवसान वो प्रकरणवश अलग अलग अर्थ कभी होता है, कभी एक अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, कभी अलग अलग अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, जहाँ जो प्रकरण चलता हो वहाँ ऐसा अर्थ करना चाहिए। हाँ वो भी ऐसा ही कभी एक अर्थ में भी आता है, कभी अलग अर्थ में भी आता है, क्योंकि अलग अलग गुण के पर्याय में एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, कभी ज्ञान गुण की, कभी श्रद्धान की, कभी राग की, कभी चारित्र की, कभी दर्शन गुण की, ऐसा अलग अलग बात है। तो जहाँ वो प्रथम चलता हो तो शब्द का एक अर्थ को पकड़ करके कभी नहीं बैठना, क्योंकि भाव बहुत हैं, भाव इतने मात्रा में है कि इसके पास शब्द बहुत अल्प है, तो एक शब्द का अनेक भावों में प्रयोग किया जाता है, तो जहाँ भी जो कहना चाहते हैं वहाँ ऐसा उसका अर्थ कथन होना चाहिए। हाँ वहाँ तो कहने का अभिप्राय हो, अभिप्राय के अनुसार, प्रकरण के अनुसार ऐसा। अध्यवसाय बंध का कारण है, हाँ, और
मोक्ष का
कारण नहीं, अध्यवसाय मोक्ष का कारण है, मोक्ष का कारण तो सम्यक दर्शन ज्ञानकारी प्राणी मोक्ष मार्ग है, पछि नाम उसका दूसरा कोई दे दे, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। तो मत कितने हो गई, ये तो बात समूह दर्शन ज्ञान चारित्रणी ले लो, बात खत्म हो गई। तो उसमें अधिष्ठान भी कहते हैं कभी, अधिष्ठान मैंने आधार लेने योग्य, उसको अधिष्ठान भी कहते हैं। हाँ वो तो वहाँ कौन सा अभिप्राय से कौन सी बात चल रही है उसी के अनुसार अर्थ कथन करना चाहिए, कोई एक शब्द का अर्थ एक ही है ऐसा पकड़ करेंगे तो आपत्ति आपत्ति हो जाती है उसमें। तो नहीं हो सकता है, टेप रिकॉर्ड से भी नहीं और वीडियो टेप रिकॉर्ड टेप से भी नहीं, ये तो ऑडियो है, जो आप सुनते हैं वो तो ऑडियो है, लेकिन वीडियो से भी नहीं, क्योंकि सजीवन मूर्ति नहीं है ना, वहाँ चाहिए सजीवन मूर्ति है, अंदर सजीवन मूर्ति है अंदर क्या, ये परमाणु की पर्याय है या जीव की कौन सी है, है? ये चर्चा करी थी, ये चर्चा बैंकली के पास करी थी, आगम तो निमित्त नहीं होता, लेकिन गुरुदेव की वीडियो टेप निमित्त हो सकती है, ऑडियो वीडियो कोई भी टेप ना बोला, उनको गुरुदेव प्रति भक्ति नहीं थी क्या, उन्होंने ना बोला कि नहीं, सिद्धांत में तो जो सिद्धांत है वही बात करेंगे, सिद्धांत को सिद्धांत रूप होता है। में कोई भी भाव ले लो, परम तत्व की वांछा का अभाव ज्ञानी को होता है, तो क्या है कि इच्छा है वांछा है उसमें मैं और वांछा वो भेद हो गया, क्या मुझे मेरा स्वरूप चाहिए तो अभेद नहीं रहा उसमें, भेद भेद हो गया, तो भेद का निषेध है इसमें। क्यों? कि जब अभेद स्वरूप है हम, हमारे स्वरूप से हम जब अभेद है तो अभेद में वांछा का अभाव होता है, चीज नहीं हो उसकी प्राप्ति चाहिए। लेकिन जब हम है, हमारी विद्यमानता को हम अनुभव करते हैं, तो फिर वांछा कहाँ की? पर मोक्ष की जो पर्याय है वो तो भविष्य में आने वाली है, वो तो नहीं है, उसकी वांछा की जाती है, तो उसको भावना कहते हैं। इच्छा नहीं कहते, लेकिन भावना कहते हैं। और भावना में और इच्छा में क्या अंतर है? कि इच्छा एक मामूली राग है, जैसे भावना में अपने भावना में जो भावा भाव जिसका भावना जिसकी भावना होती है उसके प्रति का कुछ पुरुषार्थ है, ऐसा है, पुरुषार्थ से है भावना। केवल इच्छा नहीं है, केवल राग नहीं है, उतना फर्क है। अभेद में वांछा का अभाव होता है। वो 43-44 गाथों में निर्ममत्व लिया है नियम सारण, हाँ वो बात लिया है, 43-44 गाथों में निर्मम शब्द लिया है, वहाँ वांछा का अभाव लिया है नियम सारण में।
आत्मा आत्मा का